وآمنوا اور ایمان لے آؤ بما انزلت مصدقا لما معاکم. ایمان لے آؤ کس پر؟ اس پر جو میں نے نازل کی. کیا نازل کیا اللہ تعالیٰ نے؟ قرآن. قرآن پر ایمان لے آؤ. یہ کیا ہے؟ مصدقن, یہ تصدیق کرنے والی ہے, یہ کتاب تصدیق کرتی ہے. کس کی؟ لما معاکم, جو تمہارے پاس ہے. آپ دیکھیں قرآن پاک میں, خاص طور پہ آپ سورہ مائدہ نکال کے دیکھیں, کتنی جگہ پہ یہ باتیں ہیں کہ ان کو ہم نے یہ کہا, ان کو ہم نے یہ چیز, یہ حکم دیا, یہ حکم دیا. وہ ان کی تورات میں بھی موجود ہے, قرآن اس کی تصدیق کر رہا. مثلا مثال کے طور پہ یہ جو بات ہے کہ کان کے بدلے کان, ناک کے بدلے ناک, آنکھ کے بدلے آنکھ, یہ بتایا گیا, یہ تورات میں ہے. تو قرآن نے کنفرم کیا اس چیز کو, تو یہ کنفرمیشن دیتی ہے. یہ کوئی ایسی, یہ نبی کوئی ایسی کتاب تو نہیں لے کر آئے, کوئی ایسا کلام تو نہیں لے کر آئے جو کہے کہ تورات بھی غلط ہے اور سب غلط ہیں اور کوئی اللہ کی طرف سے نہیں ہے اور اس کے اپوزٹ کہیں بات کرے. نہیں, یہ قرآن تو بلکہ کنفرم کرتا ہے, تو تمہیں تو اس کو ماننا چاہیے. جو تمہاری کتاب میں باتیں ہیں اسی کو تو کنفرمیشن کر رہا ہے, اور جو تمہاری کتاب کے اندر رسول کا ذکر ہے اسی کو تو کنفرم کرتا ہے. پھر کیوں نہیں مانتے اس کو؟ پھر آپ دیکھیں یہ والی جو بات ہے کہ جس نے ایک کو قتل کیا اس نے گویا پوری انسانیت کو, نا حق جس نے قتل کر دیا گویا پوری انسانیت کو قتل کیا. جس نے ایک کو زندگی دی پوری انسانیت کو زندگی دی. ہم کہتے ہیں یہ قرآن میں, لیکن قرآن میں کیا ہے یہ بات؟ کہ یہ ان کی تورات میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی, ان کے اوپر یہ بات کر دی تھی فرض. دیکھو اس طرح ہے کہ جب تم ایک بندے کی بھی جان لو گے تو پوری انسانیت کو مار دینا ہے. تو قرآن تو کنفرمیشن دیتا ہے, تم اسی کی مخالفت میں لگ گئے. یہ تو تمہاری ہی بات کرتا ہے, تمہاری بک کی بات کرتا ہے. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ, نہ تم پہلے کافر ہو جاؤ, پہلے انکار کرنے والے تم نہ بن جاؤ. یعنی ایک طرف تو وہ لوگ ہیں نا جن کو ان پڑھ سمجھا جاتا ہے, جو کہا جاتا ہے یہ تو امی لوگ ہیں جو مشرکین مکہ. تمہیں تو چاہیے کہ تم سب سے پہلے آ کے ایمان لے کر آؤ کہ بھئی یہ تو ہماری. اب میں نے جیسے آپ کو مثال کیا تھی کہ دو لوگ ہیں, ایک مشرک ہے ایک کوئی ہندو ہے, مثلا بتوں کو پوجنے والا, دوسری طرف ایک یہودی یا کرسچن. آپ کو زیادہ کیا لگتا ہے کون میری بات سمجھے گا؟ آپ کو لگتا ہے نا جو اہل کتاب ہے وہ سمجھے گا. تو اسی طرح کہا گیا, وہ تو ان کو پاس تو یہ باتیں ہیں ہی نہیں, ان کو تو ان کا پتہ ہی نہیں. تمہیں تو پتہ ہے آلریڈی, تم بھی پہلے کافر بن گئے. سب سے پہلے تو تمہیں ایمان لانا چاہیے تھا, تم سب سے پہلے کفر کرنے والے بن گئے. دوسرا یہ بھی مطلب ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ علماء یہود کے لیے یہ آیتیں خاص طور پہ ہیں کہ تم پہلے کافر نہ بنو, کیونکہ اگر یہ ایمان لے کر آتے تو ایک تو ان کی پوری جو یہودی قوم تھی وہ ایمان لے کر آ جاتی. تین قبیلے تھے مدینہ میں یہود کے, وہ سارے ایمان لے آتے اگر علماء ایمان لاتے. نمبر ٹو, عرب بھی دیکھ رہے تھے کہ یہ ہیں جو کتاب والے ہیں, یہ ہیں جو علم والے ہیں, دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں. جبھی تو جا کے وہ مشورے کرتے تھے ان سے. تو تم ہی سب سے پہلے کافر بن گئے, تو پہلے کافر نہ بنو. سب سے تم ایمان لاؤ گے تو تمہارے پیچھے کتنے لوگ ایمان لائیں گے؟ اس سے ہمیں کیا سبق ملا؟ کہ اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ سب سے پہلے کسی برائی کا آغاز کرتے ہیں, سب سے پہلے کوئی گناہ کرتے ہیں, ان کے پیچھے اگر جتنے لوگ وہ گناہ کر رہے ہیں تو ان سب کا وبال اس بندے پہ جاتا ہے جو پہلا ہے. تم پہلے کافر بنو گے تو تمہارے پیچھے کتنے لوگ کفر کریں گے؟ ان سب کا بھی وبال تمہارے اوپر آئے گا. تو سبب نہیں بننا چاہیے کسی بھی گناہ کے آغاز کا. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا, نہ بیچو میری آیات کو تھوڑی قیمت پر. یہ نہیں تھا کہ وہ تورات کو لے جا کے بازار میں بیچتے تھے, یہ مطلب نہیں ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ تورات کے تعلیمات کو کیسے بیچتے تھے؟ فتوے ایسے دیتے تھے جس سے کہ ان کے دنیاوی فائدے ملے ان کو, جس سے کہ ان کو یہاں پہ کوئی نہ کوئی سہولیات ملے, یہاں پہ کوئی نذرانے مل جائیں. مثلاً ہے کہ تورات میں اگر رجم کی آیت ہے, رجم کہا گیا ہے کہ جو شادی شدہ ہو اس کو رجم کیا جائے, تو اب کیا ہے, اس کو چھپا لیں گے, اس کو ٹویسٹ کر دیں گے, کچھ نہ کچھ بات اس سے نکال لیں گے, کوئی لوپ ہولز نکال دیں گے, کچھ ایسا کر دیں گے کہ ان کی پسند کا فتویٰ دے دیں, کیونکہ ایک امیر عورت نے زنا کر دی. अब जाहिर है जब उनके मुताबिक फतवा देंगे तो वो नजराने भी देंगे, वो शाबाशी भी इनको देंगे, वो इन्हीं को फॉलो करेंगे, वो कहेंगे यही आलिम है जो हम तो इन्हीं को बस फॉलो करते हैं। क्यों फॉलो करते हैं उनको? असल में होता यह है कि जहां पे हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक कोई आलिम बोल रहा हो ना, वो फिर हमें बड़ा अच्छा लगता है, हम कहते हैं बस हम इसी को फॉलो करेंगे। ये नहीं हम देखते कि हक क्या है। हमारी फॉलोइंग, हमारी सारी जो फेवरेटिज्म है, पसंदीदगी है, वो उन आलिम के लिए हो जाती है। क्यों? इसलिए कि वो तो हिजाब का नहीं कहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं मिक्स गैदरिंग भी सही है, मिक्स सारों का बैठना, कोई सेग्रीगेशन की जरूरत नहीं है, सारे बस इस तरह ही बैठो ये, और कोई हिजाब की जरूरत भी नहीं है। वो तो सूद को भी कह देते हैं कि वो आप ले सकते हैं, वो उस जमाने का था जो कि पुराना जमाना हो गया, अब सूद हलाल है, तो वो तो इस तरह से भी कहते हैं, तो वो हमें बहुत अच्छे लगते हैं। क्यों? इसलिए वो हमारी ख्वाहिशात की बात करते हैं, है ना, तो उनकी तो फॉलोइंग ज्यादा हो गई ना फिर। और जब जाहिर है फॉलोइंग होगी तो वो लोगों की तरफ से तारीफ भी होगी, उन लोगों में वाहवाह भी होगी, उन लोगों की तरफ से नजराने भी होंगे, उस बंदे की फॉलोइंग भी बढ़ जाएगी, तो उसको कितना फायदा मिला। इस फायदे को कहा गया ये क्या है, समनन कलीला, तो बहुत थोड़ी कीमत तुम बेच रहे हो अल्लाह की आयतों तुमको थोड़ी कीमत पे। और आज भी हैं ऐसे लोग, ये उलमाए यहूद नहीं है सिर्फ, उलमाए उम्मते मुस्लिमा भी ऐसी हैं कई, जो हक बात को नहीं देखते। वो कहते हैं अगर हमने ये बातें की ना तो मस्जिद में, जाहिर है हम पेड हैं, हमें पे किया जाता है, सैलरी मिलती है, मस्जिद की एडमिनिस्ट्रेशन कह देती है आपने इस बात के ऊपर खुतबा नहीं देना, क्योंकि हमारे बड़े बड़े डोनर्स आ रहे हैं, वो हमें बहुत डोनेशन देते हैं, आपने अगर इस बात के ऊपर खुतबा दे दिया, वो तो सारे यही काम करते, तो वो तो फिर बड़े नाराज हो जाएंगे। तो वो कहते हैं हाँ नहीं नहीं ठीक है, क्योंकि समन कलीला जो सैलरी मिलती है वो तो मेरा तो घर चलता है ना इससे, तो कहीं पैसों की बात है, कहीं फॉलोइंग की बात है, कहीं और। देखें अगर मैंने इनको ये कहा कि नहीं भाई ये तो सही चीज नहीं है, तो फिर क्या होगा, ये तो नाराज हो जाएंगे, इनको कह दिया कि शराब नहीं पीनी, शराब तो हराम है, और ये आप क्या कर रहे हैं, ये तो सही नहीं है, तो फिर वो तो मुझसे नाराज हो जाएंगे, वो तो फिर हमारी मस्जिद में कभी आएंगे नहीं, वो तो मेरे दर्स में नहीं आएंगे कभी, और दर्स में नहीं आएंगे मेरे तो लोग कम हो जाएंगे। तो इनको खुश रखो, और इनको खुश रखो ताकि ये आते रहें, और ये फिर बस हमारी बस वाह वाह होती रहे। यानी हक बात को बयान नहीं करना, उनको खुश करने के लिए कि ये खुश हो जाए, कितनी छोटी कीमत है ना जो ली अल्लाह की आयात को बेचने के लिए, बेच दिया ना, सौदा कर लिया ना, ताकि ये खुश हो जाए, ताकि इनके मनमाने फतवे मिल जाए। आज मुझे बताएं कौन सा फतवा है जो आपको नहीं मिलता, कोई एक मुझे बता दे कौन सा फतवा है जो आपको नहीं मिलता। हर फतवा आप देख लें आप, इसीलिए लोग बड़ा पसंद करते हैं कि हम दीन कोई जरूरत नहीं हम आके किसी क्लास में सीखें, हम तो यूट्यूब से ही सीख लेते हैं, यूट्यूब में डाला ये चीज जायज है कि नाजायज है, कोई कहेगा जायज है, कोई नाजायज कहेगा, जो कहेगा कि हाँ ये ठीक है वो बस ये अच्छा है इसको हम मानते हैं। तो आजकल तो दीन यूट्यूब से लिया जा रहा है ना, गूगल आपको बताएगा कि क्या करना है, तो हर तरह का फतवा मिल जाता है, सूद के हलाल होने का भी फतवा मिल जाता है, गाना बजाना हलाल होने का भी मिल जाता है, शराब के हलाल होने का भी मिल, वो तो वो जमाने की शराब थी, आज की शराब थोड़ी, और फिर इतनी पी लें जिससे नशा ना आए तो फिर वो तो सही है। तो फतवे बताएं कौन सा नहीं मिलता, जो ऐसे फतवे देने वाले हैं जो अल्लाह की आयात में लूप होल्स निकाल के और फिर उसको बेचते हैं थोड़ी कीमत, ये थोड़ी ही तो है, पूरी दुनिया भी, उलमा कहते हैं पूरी दुनिया भी किसी को मिल जाए, ये तो खैर बहुत ही थोड़ी है, लेकिन पूरी दुनिया भी बिलफर्ज किसी को दे दी जाए कि आप ये फतवा दे दें और पूरी दुनिया आपको मिल जाएगी, तो तब भी वो समनन कलीला ही है। ये नहीं है मतलब कि अगर भारी कीमत मिले फिर बेशक बेच देना अल्लाह की आयात को, समनन कलीला पे ना बेचना, ये नहीं कहा जा रहा, बल्कि कहा जा रहा है पूरी दुनिया समनन कलीला है, तुम अल्लाह की आयात को दुनिया के बदले भी, पूरी दुनिया के बदले भी बेच देते हो, तो वो भी तुमने बड़ा सस्ता सौदा किया, क्योंकि अल्लाह की आयात का तो बहुत बड़ा मकाम है, इतनी घटिया चीज के लिए तुमने बेच दिया इनको। लेकिन आज बाज उलमा सिर्फ अपने फिरके को प्रमोट करने के लिए उलट पुलट आयतों के मतलब निकाल के, यहां से देखें ये तो दलील निकलती है ना। इसीलिए आपको कहा जाता है खुद सीखो कुरान, खुद पढ़ो कुरान, खुद समझो कुरान, यानी आप खुद आए बजाय इसके कि बस हमने पढ़ना सीखना तो कुछ नहीं है, बस रमजान जब आता है तो किसी आलिम आवे, क्रेडिट कार्ड पे लेना हलाल है कि हराम है, मैकडोनल्ड से खाना हलाल है कि हराम है, इस किस्म के क्वेश्चन उस दिन के लिए रखे होते हैं, बस उसके बाद कोई, उसके बाद पता ही नहीं कि हम कहाँ हैं। जिसने जो बता दिया बस, जिसने हलाल कर दिया तो बहुत अच्छा है। देखिए ये नई चीज होती, खुद दीन को सीखें, खुद समझें अल्लाह की किताब को। हाँ अंधे बन के रहना कोई चॉइस नहीं है। तो वो तो सामान कलीला पे बेचते थे, तो क्या जब, अच्छा ये बताएं कि अगर कोई बेच भी देता है, क्या जो फॉलो करने वाला है उसका जिम्मा खत्म हो जाता? नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए भी फरमाया था कि मेरे सामने अगर तुम लोग दो झगड़ा लेकर आते हो, मैं अपने अल्फाज में आपको यह हदीस बता रहे हैं, दो लोग झगड़ा लेकर आते हो, एक चर्ब जुबान है वो किसी तरह मुझे कायल कर लेता है और मैं उसके हक में फैसला दे देता हूं और उसका हक नहीं बनता, वो जालिम है, तो समझ लो कि मैं उसको आग का अंगारा दे रहा हूं, यानी वो बच नहीं जाएगा फिर, वो बच नहीं जाएगा कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला दे दिया तो बस अब तो मेरे लिए हलाल हो गया ना। नहीं, वो तो आप जो हकायक उसके सामने लेकर गए उसने उसके मुताबिक आपको फैसला बता दिया। अब आप किसी टीचर से पूछने जाते हैं, आप कहते हैं भाई ऐसे, अब भाई विरासत के अंदर ये मसाइल आ गए हैं, देखिए अगर ऐसे हो तो फिर क्या है, अगर फलां इजाजत दे दे मुझे ये लेने का तो फिर क्या है। अब वो तो बेचारा वो ही बोलेगा ना जिस तरह से आपने उसको सिचुएशन और स्टोरी बताई है। अब आप स्टोरी अपने मुताबिक की करके बता दें तो वो उस तरह ही दे, हाँ हमें तो, हमने फतवा ले लिया, हमें तो फलां आलिम ने फतवा दे दिया, अब बस ठीक हो गया, हमारे लिए जायज हो गया। नहीं, वो चीज जायज नहीं हो जाती, चाहे कोई आलिम फतवा दे दे, चाहे कोई मुफ्ती फतवा दे दे। तो वो लोग तो ऐसे करते थे कि तो बदल ही देते थे, यानी बातों को ऐसा हेर फेर करते थे सिर्फ इसलिए ताकि हमारा फायदा हो जाए, हमसे ये दुनिया की दौलतें और ये जा और ये चीजें ना छिन जाए, तो वो निकाल ही लेते थे, कोई निकालना कौन सा मुश्किल है। जब आवाम जो है वो अंधी हो तो अंधे को तो आप जो भी बता देंगे उसने तो समझना ये ठीक ही है ना। ऐसे जब हम अंधे रहते हैं, हमें ना कोई अल्लाह की किताब का पता, ना कोई हदीस का इल्म है, कुछ नहीं पता, बस आलिम के सामने बैठ के अच्छा बताएं इसके बारे में, अब वो जो बता देगा, हमें तो यही समझ है ना, बस उसने बता दिया। तो अंधे बन के मत रहे। तो वो क्या करते थे, सामान कलीला पे बेच देते थे, कितना घटिया सौदा किया, कितना, और ये कितना आम है, और इस चीज को नहीं सोचते कि देखो कुरान के अंदर ये आया उलमा यहूद के लिए, आज यही काम हो रहे हैं कि फतवे बेचे जा रहे हैं सिर्फ इसलिए ताकि लोग खुश हो जाए हमसे, लोग हमारे फॉलोअर बन जाए, हमारे स्टूडेंट बन जाए, हमें मान जाए कि ये बहुत बड़े आलिम है। फत्तकून, बस मेरे से सिर्फ डरो, फिर कहा गया यानी तकवा जब आएगा ना इंसान के अंदर, तकवा आएगा, अल्लाह का डर ही ऐसी चीज है कि फिर उसके बाद ही इंसान हक बात कह सकता है। फिर इंसान कहता है मुझे किसी का डर नहीं है, जाते हैं तो जाएं, मुझे तो हक बात कहनी है, मुझे नहीं इस चीज का डर है कि ये मेरे फैन बनते हैं या नहीं, मेरे फॉलोअर बनते हैं या नहीं, मेरे मुझे कितने नजराने देते हैं, आई डोंट केयर। ये या फत्तकून वला तलबिसुल हक बिल बातिल, और ना तुम मिलाओ, गडमड ना करो हक और बातिल को। अब देखें इनके बारे में आता है कि जुबानें ट्विस्ट करके ऐसे बात कहते थे कि जैसे ये भी तौरात में लिखी हुई है, हालांकि उसमें नहीं लिखी होती थी। बाज लोग ऐसे एक लय के अंदर पढ़ने शुरू जाते हैं जैसे कि ये कुरान की आयतें ही पढ़ रहे हैं, लेकिन वो उनकी अपनी बात होती है, और दूसरा समझते हैं जब तिलावत के अंदाज में पढ़ रहे हैं शायद ये कुरान में ही लिखा हुआ है, तो गड़मट कर देते थे, ऐसे मिक्सअप कर देते थे, यानी हक के ऊपर बातिल का लिबास, तलबीस हुआ ना, बातिल का लिबास पहना देते। ये एक तरीका था, या तो बिल्कुल हक को छुपा लेते थे, आगे है ना वह तख्तुमुल हक, और ना तुम छुपाओ हक को, आपको बिल्कुल ही छुपा देते थे, या ऐसा गड़मट कर देते कि दूसरा कंफ्यूज ही हो जाए, उसको समझ ही ना आए कि इसमें से सही बात क्या थी। आप बाज लोगों से आप पूछें कोई सवाल, अब उन्होंने चूंकि उनके फिरके की उसके अंदर निगेशन हो रही होती है, वो सही बात का जवाब ही नहीं देंगे, गोलमोल ऐसा करेंगे कि इंसान को लॉस्ट ही हो जाए। तो हक बात करो, जो बात सही है, जबकि वो जानते थे वह अंतुम तालमून, या तो होना कि पता ही नहीं है, तुम्हें पता है, तुम जानते हो, फिर जानबूझ के हक को छुपाते हो। और बाज दफा ये होता है कि उनको ये पता होता है कि बस ये हमारा फिरका है, हमने इसमें लोगों को लेकर आना है, और इस फिरके के लिए मुझे ये बात करनी है, मेरे फिरके में तो ये कहा जाता है। अब बात चाहे हक बात सामने है, समझ आ रही है, हदीस सामने है, फिर भी उसको ऐसा माना पहनाएंगे या लोगों को ऐसी बात बता देंगे, नहीं नहीं ये तो ऐसे हदीस है, नहीं नहीं ये तो ऐसे, ताकि लोगों को बेवकूफ बना के और बस इनको अपने फिरके की तरफ किया जाए। ऐसी ऐसी अल्लाह ताला माफ करे, ऐसी ऐसी दलीलें कुरान से ही निकाल देते हुए ना, युदिल्लु बिही कथीरा वाली बात, इसी कुरान से लोग गुमराह होते हैं, इसी में से ऐसी सी बातें निकाल के और अपने फिरके को प्रमोट करेंगे। देखो ये इसकी दलील है, ये देखो ये यहां पे ये लिखा है ना, ये दलील है। हालांकि कुरान वाजे है, हदीस वाजे है, और तुम तो जानते हो, तुम इल्म रखते हो, यानी इल्म के बाद इस तरह के काम करना ये बहुत बड़ा गुनाह है। इल्म के बाद हक को छुपाना, आपको बात पता है, समझ है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि नहीं जी हम तो फलां फिरके से हैं, हम तो वही मानेंगे जो हमारे इमाम कहते हैं। अब बात समझ भी आ गई है, फिर भी बस नहीं जी हमने तो नहीं ये फॉलो करना, वो दिखाया जाता है। देखो भाई ये देखो हदीस सामने है तुम्हारे, ये देखो कुरान की आयत तुम्हारे सामने है, तुम क्यों नहीं मानते? नहीं हमने अपने इमाम को ही माना, हम तुम तालमून, तुम इल्म रखते हो। उनको भी कहा गया, आज हमारे लिए भी यही चीज है कि इल्म रख के उसके बाद हक और बातिल को गड़मड़ कर देना, हक है आपको पता है लेकिन ऐसे उसको छुपा देना, ये इल्म आने के बाद ज्यादा बड़ा गुनाह है, ज्यादा बड़ा गुनाह है। देखिए इल्म आने के बाद तो होना क्या चाहिए कि इंसान हक को बयान करे ना, हक बात करे, लेकिन जब इंसान ये काम करता है तो उसकी पूछ ज्यादा है, उसकी पकड़ ज्यादा है। वह अकीमु सलाता व आतु ज़कात, और उनसे कहा गया तुम कायम करो नमाज को और अदा करो जकात को, वरकाउ मा राकेईन, उनमें भी नमाज और जकात थी, ठीक है, लेकिन उनकी नमाजें कितनी थी? मूसा अलैहि सलाम के पास जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे मिले थे तो क्या उन्होंने फरमाया था कि मेरी उम्मत पे दो नमाजें फर्ज थी, उनसे वो भी नहीं पढ़ी। उनसे कहा जा रहा है कायम करो नमाज पे, पहला मुतालबा उनसे क्या किया गया, ईमान लाओ, ईमान लाओ इस कुरान पे, कुरान पे ईमान लाने का मतलब है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाना। और फिर उसके बाद कुछ कहा गया, डोंट्स दिए गए, कुछ डूज हैं कुछ डोंट्स हैं, क्या ना करो, अव्वल काफिर ना बनो, अल्लाह की आयतों को ना बेचो, अल्लाह की आयतों में गड़मड़ ना करो, हक को ना छुपाओ। और फिर अब डूज दोबारा आ गए, नमाज। आपको पता है मूसा अलैहि सलाम जब अल्लाह ताला के पास तो बात करने के लिए जब नबूवत उनको मिली थी तब भी इसी किस्म की इंस्ट्रक्शंस थी उनको कि अल्लाह को याद करो, अल्लाह तुम्हारे साथ होगा, तो नमाज अल्लाह की याद के लिए, और जकात अदा करो। जब जकात इंसान देता है उससे क्या होता है, उससे भी माल की मोहब्बत कम होती है, ठीक है, माल की मोहब्बत कम होती है। और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, यानी रुकू करने वाले कौन थे? आपको पता है यहूदियों के अंदर हमारे जैसा सजदा नहीं है, आई मीन रुकू नहीं है, वो रुकू क्या करते हैं, वो जरा सा बस आगे को होते हैं, बस यही है उनका, उनकी नमाज में जो हमारी जैसी पोजीशन है रुकू वाली वो नहीं थी। अब कहा गया उनको वरकाउ मार राकेईन, राकेईन कौन है? मुसलमान उम्मत मुस्लिमा है रुकू करने वाली, यानी उनको ज्वाइन कर लो, इसमें ये इशारा मिलता है, मुसलमान हो जाओ, उनके साथ मिलके नमाजें पढ़ो, ठीक है। अतामुरून अन्नास बिलबिरी व तंसौना अनफुसकुम, तुम लोगों को तो हुक्म देते हो नेकी का और तुम अपने आप को भूल जाते हो, वह अंतुम तत्लून किताब, हालांकि तुम तो किताब पढ़ते हो। ये बड़ा आसान होता है ना लोगों को नसीहतें करना, लेक्चर देना, ये करो वो करो, झूठ नहीं बोलो, तकवा इख्तियार करो, अल्लाह का डर नहीं है तुम्हारे अंदर, और खुद की जिंदगी देखें तो कुछ भी नहीं है, खुद के अमल में देखें तो ना कोई खुदा खौफी है ना कोई नमाज है। लोगों को बहुत नमाजों के ऊपर लेक्चर दे देना, लोगों को खड़े होके कह रहे हैं, फंड रेजिंग कर रहे हैं, अबे इतनी हदीसें सुना रहे हैं, कुरान की आयतें सुना रहे हैं, देखो कितनी फजीलत है खर्च करने की, अल्लाह के रास्ते में दो और खुद अपनी जेब से एक पैसा भी ना निकालना। तो तुम लोगों को नेकियों का हुक्म देते हो, खुद अपने आप को भूल जाते हो। ये अल्लाह ताला के हाँ बहुत ही यानी नाराज करने वाली बात है कि इंसान, आगे सूरह सफ में भी आएगा कि इंसान क्या करता है, जबकि वो लोगों को तो नसीहतें बहुत करता है लेकिन खुद अपने आप को भूल जाता है। अच्छा, अब यहां पे ये मकसद नहीं है कि लोगों को कोई नेकी की बात ही ना बताएं। हम नहीं लोगों को नेकी की बात बताते। बाज लोग कहते हैं हम नहीं इसलिए बताते क्योंकि हम तो खुद अमल नहीं करते, तो हम क्या बताएं, हम क्या किसी को नमाज पढ़ने का कहें क्योंकि हम तो खुद ही नहीं नमाज पढ़ते। देखें, यहां पे ये नहीं कहा जा रहा कि आप किसी को नेकी की बात नहीं बता सकते। नेकी की बात आप बता सकते हैं। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि आप दूसरों को तो नेकी की बात बताते हो, खुद सबसे पहले अपने ऊपर करनी चाहिए, लेकिन आप खुद नहीं करते। समझ आई ये बात? समझ आई? इसमें फर्क है। एक है नेकी करना, ठीक है, एक है नेकी करना खुद, और एक है लोगों को बताना। ये दो डिफरेंट काम है। जिस वक्त आप इनको साथ गड़बड़ कर देते हैं तो फिर प्रॉब्लम होती है ना। एक है खुद नेकी करना, यानी इंसान खुद अपने ऊपर वो चीज को लागू करे। दूसरा है काम दूसरों को कहना, दूसरों को बताना। अब क्या होगा जब इंसान खुद करता है, तो फिर दूसरों को जब वो बताएगा तो उसकी जुबान के अंदर असर अल्लाह ताला पैदा कर देते हैं। जब इंसान खुद करता है, नहीं करता और दूसरों को बताने लगता है, तो उसकी जुबान में असर खत्म हो जाता है उसकी। वो कितना भी लोगों को समझाता रहे, नसीहतें करता रहे, लोगों को कोई नहीं उसकी बात का असर होता। यहां पे कंडेम किसको किया जा रहा है? इसको नहीं कि तुम लोगों को क्यों बताते हो, इसको किया जा रहा है कि तुम खुद क्यों नहीं करते, जबकि तुम्हें खुद पता है ना, जब आप किसी को कन्विंस कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके अपने कान सुन रहे हैं, तो खुद क्यों नहीं करते वो काम, ये कहा जा रहा है। समझ आई बात? इसलिए कि कयामत के दिन ऐसे होगा कि बाज लोग जो जन्नत के अंदर होंगे, वो जहन्नुम वालों को देखेंगे तो कहेंगे, हाँ तुम जहन्नुम में कैसे चले गए, तुम तो मैं इतनी नसीहतें किया करते थे, तुम तो मैं इतना अच्छा बताया करते थे, तुम कैसे जहन्नुम में चले गए। तो वो कहेगा, मैं तुम्हें तो बताता था लेकिन मैं खुद नहीं करता था, मैं खुद नहीं करता था। तो इससे हमें पता चलता है कि गुनाह क्या है उसका, खुद ना करना। ये गुनाह नहीं कि दूसरों को क्यों बताया, ठीक है? तो ये दो अलग अलग नेकियां, एक खुद करना, ये एक अलग नेकी है, एक दूसरे को बताना, ये एक अलग नेकी है। आपने ये नेकी तो कर दी कि दूसरे को बता दिया लेकिन खुद नहीं की, इसकी सजा आपको मिल सकती है कि खुद क्यों नहीं की। इसकी सजा नहीं है कि दूसरों को क्यों बताया, ठीक है? मसलन है कि एक इंसान स्मोक करता है, सिगरेट पीता है। अब क्या वो दूसरों को कभी ना बताए कि सिगरेट ना पिया करो, ये खतरनाक है? वो कहता है, भाई मैं खुद नहीं छोड़ पा रहा लेकिन ये बहुत बुरी चीज है। वो लोगों को बता सकता है, ठीक है? अब इससे बताने से हो सकता है कभी वो खुद भी सीधे रास्ते पर आ जाए। तो बताना जरूर चाहिए, क्योंकि अगर हर इंसान ये सोचे मेरे अंदर तो अभी गुनाह है, मैं कैसे लोगों को बताऊं, अगर ये हर इंसान सोचेगा ना, तो फिर क्या होगा, कोई किसी को कभी कोई नेकी की बात नहीं बता सकता। इसलिए कि हर इंसान में गुनाह होंगे, कोई इंसान पाक नहीं है। अब मैं अगर आपको यहाँ पे कोई बता रही हूं बात या कुछ सिखा रही हूं कुरान का, तो क्या मैं पाक साफ हूं? नहीं, नहीं है ऐसा। हर एक इंसान में गुनाह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, कुल बनी आदम खताऊन है, खताकार है, कोई भी हम में से महफूज नहीं है, हम बिल्कुल पाक साफ हो गए तो आज हम दूसरों को बताने बैठ गए, नहीं। तो इंसान ये नहीं हम कह सकते कि अब हम बिल्कुल पाक साफ होंगे तब हम किसी को कोई बात बताएंगे। और लोग भी बाज दफा कहते हैं, लो पहले खुद तो कर लो फिर उसके बाद दूसरों को भी बताना। नहीं, ये बात नहीं, आपसे नहीं भी हो पा रहा फिर भी लोगों को बताएं। लेकिन बुरी बात क्या है कि हम लोगों को तो बड़े बड़े वाज करें, तुम ऐसे नहीं करो तुम, और हमारी अपनी जिंदगी में एक रमक भी नजर ना आए उस चीज की, वो बुरी बात है। हम लोगों को कहें अल्लाह का खौफ नहीं है, तुम लोगों को अल्लाह का खौफ करो, ये करो, और फिर जब हमारी अपनी जिंदगी आए तो उनके अंदर हमें कोई खुदा खौफी नजर ही नहीं आती, हमारी जिंदगी में भी कोई है, ये बुरी बात है कि खुद क्यों नहीं करते। तो खुद ना करने को कंडेम किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि दूसरों को बताने को से मना किया जा रहा है। तो दूसरों को हमेशा बताते रहना चाहिए, हाँ ये जरूर बात है कि अपने आप के ऊपर पहली तवज्जो होनी चाहिए। सबसे पहले इंसान अपने आप को खड़ा करे उन आयतों के सामने कि देखो ये ही आयतें मेरे लिए हैं। ये नहीं कि लेक्चर दूसरों के लिए तो बड़े प्रिपेयर कर लिए, दूसरों को तो ऐसे मतलब बड़े बड़े जबरदस्त दलीलें दे के और हदीसें सुना के और ये बड़ा जबरदस्त लेक्चर हुआ, लेकिन खुद के अंदर क्या है? ये कोई परफॉर्मेंस का इम्तिहान नहीं कि मेरी परफॉर्मेंस कैसी रही। परफॉर्मेंस मेरी ये है कि मेरे अमल में क्या है। हम सोचते हैं लेक्चर देना मेरी परफॉर्मेंस है, लोगों को हम बता रहे हैं, उनको हमने कितना इंप्रेस कर दिया। नहीं, और एक और हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शबे मेराज मेरा गुजर कुछ लोगों पे हुआ, यानी मेराज की रात पर मेरा गुजर कुछ लोगों पे हुआ जिनके होंठ और जुबाने आग की कैंचियों से कुतरे जा रहे थे। आप सोचें, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, मैं ये सोच रही थी कि कैंची से, आम कैंची से भी अगर जुबान कट जाए, वो तो दूर की बात है, थोड़ी देर के लिए दांत के नीचे भी जुबान आ जाए ना, तो इंसान कितनी देर सीसी करता रहता है। और कहां कैंची से काटना, और ये तो इंसान की दुनिया की कैंचियां हैं, आग की कैंचियों से जुबाने और होंठों को काटना। तो मैंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा ये कौन है, जिब्राइल ने बताया ये आपकी उम्मत के दुनियादार वाइज हैं जो लोगों को तो नेकी का हुक्म बहुत देते थे लेकिन अपनी खबर नहीं लेते थे। इब्ने कसीर में रिवायत, अपनी खबर नहीं थी कुछ, अपनी कोई परवाह ही नहीं थी, यहां पे दर्स दे के उठे, वहां पे जाके पहले रिश्तेदारों से बहुत अच्छा करना चाहिए, फिर उसके बाद गए और अपने रिश्तेदारों के साथ कोई खबर ही नहीं है कि क्या किया। मिसाल एक बता रही हूं। तो ये सब चीजें हमें खुद भी देखना है कि हम जब भी हम किसी से बात कर रहे हैं, हम अपने बच्चों को मसलन नमाज का कर, नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो, खुद हमारी नमाज कुछ है ही नहीं। बच्चों को सच बोला करो, तुम सच नहीं बोलते हो, और अब अगर तुमने झूठ बोला तो मैं तुम्हारे साथ ये करूंगी, ये पनिश करूंगी, और खुद हम झूठ बोल रहे हैं। तो ये सिर्फ कोई मस्जिद में बैठ के वाज देने वाली बात नहीं है, हम जगह जगह पे देखें, जहां पे भी हम किसी को तो नेकी का हुक्म दे रहे होते हैं। अपने बच्चों तो हम चाहते हैं कि वो पैगंबर ही बन के बैठ जाए, इतने बड़े ओहदे के ऊपर वो हो जाए कि बस फरिश्ते बन जाए, वो उनसे कभी कोई गलती हो ही ना, मतलब ऐसे नेक और पारसा बन जाए, लेकिन खुद और उनको नसीहतें करने में और लेक्चर देने में हम कितने होशियार हैं। फिर असर क्यों नहीं होता, हम कहते हैं असर नहीं होता, देखो इनको इतनी दफा बताया, इसलिए असर नहीं होता कि वाइज बेअमल जो होता है उसकी बात में असर नहीं होता। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, अल्लाह हम सबको माफ फरमाए। तो जो भी आगे नसीहत करें, खुद कोशिश कम से कम ये होनी चाहिए जरूर कि हम अपनी तौर पर अपने अमल के अंदर जरूर उन चीजों को लेकर आए। लोगों को हम तहज्जुद की बड़ी तरगीब देते रहे, खुद हमारा तहज्जुद का कुछ पता ही नहीं। लोगों को हम नमाज की फर्जियत बताते रहे, खुद हम फजर पे सोए पड़े रहे, ये क्या हुआ ना फिर। तामुरून नासा बिल बेरी व तनसौना अनफुसकुम, अपने आप को तुम भूल ही जाते हो। वह अंतुम ततलून किताब, जबकि तुम एक किताब पढ़ते हो, तुम्हें तो खुद पता है, यानी सारी चीजें तुम्हारे सामने तो क्लियर है। अफला ताकिलून, क्या तुम अकल से काम नहीं लेते? यहां पे नहीं कहा कि तुम इल्म नहीं लेते, इसलिए कि ये इल्म की बात नहीं, इल्म तो उनके पास बहुत था, वो तो किताब पढ़ते थे। इल्म से हिदायत नहीं आ जाया करती ना, इल्म से सिर्फ हिदायत नहीं मिलती, हिदायत तब मिलती है जब इंसान अपने दिल को खोल दे हिदायत के लिए। इल्म इनके पास, इनसे ज्यादा इल्म किसके पास था, ये तो इतने बड़े उलमा थे, इनसे ज्यादा क्या इल्म होगा किसी के पास। मगर देखो इतना इल्म हो के भी उनका क्या हाल था। और इसी सिलसिले में एक और हदीस में आता है ना, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की خدمت ایک یہودی لڑکا کیا کرتا تھا۔ تو ایک دفعہ بڑا سخت بیمار ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کرنے کے لیے گئے۔ جب عیادت کرنے کے لیے گئے تو دیکھا کہ وہ تو بالکل یعنی اب قریب المر گیا، مرنے والا ہے وہ بچہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کلمے کی تلقین کی کہ اسلام لے آؤ، ایمان لے آؤ۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا تو باپ نے کہا ابو القاسم جو بات کہہ رہے ہیں نا ان کی بات کو مان جاؤ۔ تو بچے نے کلمہ پڑھ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ پھر وہ فوت ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ شکر ہے اللہ کا جس نے میری بدولت اس کو آگ سے بچا لیا۔ تو اس کا مطلب وہ جو باپ تھا اس کو سمجھ تھی نا، ورنہ اپنے بیٹے کو کیوں کہتا کہ ہاں ایمان لے آؤ، اس کو کہہ دیا خود نہیں مانا، خود نہیں ایمان لے کر آیا۔ دیکھو بعض دفعہ پتا ہوتا ہے بات کا لیکن انسان نہیں خود مانتا۔ دوسروں کو نصیحت کرنا اصل میں بڑا آسان ہوتا ہے، خود عمل کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اس وجہ سے انسان خود نہیں کرتا، اپنے نفس سے حالانکہ پہلے یہاں سے شروع بات کرنی چاہیے، لیکن دوسروں کو کہنا اور دوسروں میں واہ واہ لینا کہ بڑی اچھی بات کی، اتنے بڑی عقل کی بات کی، بڑی زبردست بات کی، بڑا اچھا طریقہ آپ کا بولنے کا، یہ تعریفیں لینے کے لیے ہم باتیں تو بڑی زبردست ایسے ایسے شعلہ بیانی سے کر لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد کیا ہے؟ اپنی بھی فکر ہے کہ نہیں ہے، یہ بات ہے۔ افلا تعقلون، عقل نہیں ہے، افلا تعلمون کیوں نہیں کہا؟ اس میں یہاں پہ علم کی ضرورت نہیں ہے، علم تھا تو دوسروں کو بتا رہا تھا نا، یہاں پہ عقل کی ضرورت ہے کہ سوچو، تھنک۔ سوچتے نہیں ہو، وہی درس کے اوپر ہم بیٹھے ہوئے ہم اتنی باتیں کر رہے ہیں، اور وہی ہم گھر جاتے ہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے آج بولا بھی کیا ہے۔ وہی ہماری زبانیں، وہی ہمارے جھگڑے، وہی تکبر، وہی انا، وہی سارا کچھ جس کے اوپر اتنے لمبے لیکچر دے کے آئے ہوتے ہیں۔ تو کیا یہ ہمارے خلاف حجت نہیں بنے گی کہ تمہیں پتا تھا اور پھر تم نے یہ کیا؟ تم تو پڑھتے تھے، اس کا مطلب پڑھنے کے بعد وانتم تتلون الکتاب، تم تو پڑھتے تھے کتاب کو، تلاوت کرتے تھے کتاب کی۔ کتاب کو پڑھنے کے بعد انسان کی پوچھ زیادہ ہے کہ تمہیں تو پتا چل گیا تھا نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگاہ رہو، سب سے بدتر علماء بے عمل علماء ہیں، بے عمل، جن کے پاس عمل نہیں ہے، بس ممبروں پہ کھڑے ہو کے تقریریں کرتے نا، اس سے تو نہیں انسان عالم بن جاتا۔ تو یہ بڑی سخت آیت ہے، بہت یہ بھی ہمارے لیے آئے اوپننگ آیت ہے کہ جب ہم دوسرے کو کہہ رہے ہیں تو ہم خود کیا کر رہے ہیں، ہمارا اس وقت خود کا کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ یہ مقت ہے، اللہ کے لیے بڑی ناراضگی کی بات ہے اللہ کے ہاں یہ چیز، کہ تم وہ جو کہتے ہو وہ کرتے نہیں ہو۔ اچھا یہ پیچھے ایک بات رہ گئی، ورقاء مار راکعین میں ایک بات رہ گئی ہے، وہ یہ کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، اس میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا بھی کہا گیا۔ ایک تو یہود کو کہ تم ایمان لاؤ اور مسلمانوں کے ساتھ مل جاؤ، دوسرے یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی اہمیت پتہ چلتی ہے یہاں پہ، کہ نماز پڑھو مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں، عورتوں کے لیے تو افضل یہ کہ گھر میں پڑھیں، لیکن مردوں کے لیے کہ وہ جماعت سے پڑھیں۔ ایک نابینا صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور عرض کیا تھا، مسلم میں یہ روایت ہے کہ میرے ساتھ کوئی آدمی نہیں ہے جو مجھے مسجد تک لے آئے، تو آپ مجھے اجازت دیں میں گھر میں ہی نماز پڑھ لیا کروں۔ آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے۔ اور جب وہ جانے لگا تو آپ نے پوچھا کہ اذان کی آواز تمہارے گھر تک پہنچتی ہے؟ انہوں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ، اذان کی آواز تو میں سنتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر تو مسجد میں تمہیں آنا ضروری ہے۔ پھر آپ نے فرمایا پھر کوئی رخصت نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یعنی جو انسان اذان کی آواز خاص طور پہ سنتا ہے وہ اس کے لیے تو اس کے گھر میں نماز ہوتی نہیں، اس کو مسجد آنا ہی آنا ہے۔ تو یہ بھی دیکھیں، آپ کو پتا ہے کہ جب کوئی آدمی مسجد کی طرف جاتا ہے نماز کے لیے تو ہر قدم پہ اللہ تعالیٰ اس کے اعمال میں نیکی لکھتا ہے، اس کا ایک درجہ بلند ہوتا ہے، ایک گناہ معاف ہوتا ہے۔ جتنی دیر وہ جا کے مسجد میں بیٹھا رہتا ہے نماز کے انتظار میں، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ کتنی بڑی سعادت ہے جو انسان یعنی اس کو پا سکتا ہے مسجد میں نماز پڑھنے سے۔ जमात के साथ पढ़ने से, चलो अगर मस्जिद दूर है नहीं जा सकते, तो कम से कम ऐसा जरूर करें कि घर में ही जितने लोग हैं वो जमात से नमाज पढ़ लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहां पे 3 लोग हों और वो जमात से नमाज ना पढ़े, तो फिर क्या होता है, शैतान उन पे मुसल्लत हो जाता है। अलग अलग पढ़ने से बेहतर है इंसान जमात के साथ पढ़े। फिर वरखा उमार राखी, ये सिर्फ उनके लिए नहीं है कमांडमेंट्स, ये यहूद के लिए नहीं है सिर्फ, ये हमारे लिए भी है। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। ये तिलावत सुनिए।
يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون.